स नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
तो भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में 30th श्लोक में भगवान ने कहा कर्मयोग कैसे करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि जो लोग कर्म योग करते हैं उनको क्या फल मिलेगा, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो पाप पुण्य से छुटकारा पा जाते हैं। जो कर्म योग करेंगे वो पाप और पुण्य से छुटकारा पा जाएंगे। पाप और पुण्य से छुटकारा पा जाएंगे मतलब मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा फिर क्या होगा, वो ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कर्मयोग करना चाहिए। और जो नहीं करते हैं वो उनका क्या होता है, नष्टान चेत सर, उनका जीवन नष्ट हो गया। जीवन नष्ट हो गया मतलब क्या, इस शरीर के अंदर आप उसको वस्तु को तत्व को ट्रुथ को रियलिटी को आप प्राप्त कर सकते थे मगर आपने प्रयास नहीं किया, इसलिए वो आपके हाथ से निकल गया। इसलिए नष्ट चेसा, उनका जीवन जो नष्ट हो जाता है। ईसावासी उपनिषद में ऐसे लोगों का कहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दिया। फिर भगवान कहते हैं अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो क्या होगा, हमने कहा कर्मयोग करो आपकी भलाई के लिए कहा मगर आप फिर भी नहीं मानते हो तो क्या होगा। कहते हैं कि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, सब अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करेंगे। हम लोग के गुरुदेव के BMI चार्ट के अंदर में सब वासना के अनुसार अपना अपना काम करेंगे। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, या तो भगवान की बात मानो, भगवान क्या कहते हैं कर्मयोग करो, अगर नहीं करोगे अपनी प्रकृति के हिसाब से कर्म करोगे तो हमको किसको मानना चाहिए, कोई सुपीरियर, प्रकृति मीन्स माया, इधर माया के हिसाब से चलो और या भगवान के हिसाब से चलो, दोनों चॉइस है हमारे पास में। भगवान कहते हैं हमारी बात सुनो, हम कहते नहीं आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो ठीक है जाओ मर्जी करो। फिर भगवान कहते हैं कि आपको आपकी इंद्रियों के अंदर ये राग द्वेष ये प्रकृति कहां बैठी हुई है। हम लोग जो वासना बोलते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स बोलते हैं, राग द्वेष बोलते हैं, वो कहाँ है। तो भगवान कहते हैं इंद्रिय से इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित, तो ये भीतर में आपके पास बैठे हुए हैं। और ये कौन है, तयोर वसम ना गच्छे तो तस्य परिपंथी नो, परिपंथी नो मतलब ये आपके शत्रु हैं, आप इनके हिसाब से काम मत करो। हम लोग क्या करते हैं, मेरे मन में आया कर दिया हमने, बाद में पता लगता है कि हमको हमने गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हमें। भगवान कहते हैं ये शत्रु हैं, हमें क्या करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सनुष्ठितात्। आपको अपना स्वधर्म करना है, आपको अपनी वासना एग्जॉस्ट करनी है। वासना कैसे एग्जॉस्ट होगी? कर्मयोग से एग्जॉस्ट होगी। अगर आप कर्मयोग नहीं करते हैं तो वासना बढ़ती जाएगी, कम तो नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। और आपने वो नहीं करके पर धर्म शुरू कर दिया, फिर क्या होगा? पर धर्म के अंदर आपका और ज्यादा नुकसान है। हम लोगों ने इसको देखा था कि आपका स्वधर्म क्या है। स्वधर्म है कि आपको इस जीवन में उस वस्तु को प्राप्त करना है, ये आपका स्वधर्म है। हमने स्वधर्म नहीं करके हम क्या कर रहे हैं? हम पर धर्म कर रहे हैं। पर धर्म कर रहे हैं मतलब हम माया के संसार में फंसे हुए हैं, पर धर्म करते जा रहे हैं। भयावह, उससे क्या होगा? आपकी वासना बढ़ती जाएगी। वासना बढ़ती जाएगी तो मतलब क्या हुआ? हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटी की बड़ी कहां समझ में आता है हमें। तो हम लोगों ने देखा है कि ये वासना जो है, दिस इज द ब्लू प्रिंट वी आर गिविंग टू द लॉर्ड। मेरे पास में इतनी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, इतनी मेरी डिजायर्स हैं, मेरी डिजायर्स कंप्लीट करो। भगवान कहते हैं और बढ़ाओ, जितनी आपकी वासनाएं हैं उतना मैं पूर्ण करूंगा, मगर कितने जन्मों में करूंगा इसका ठीक नहीं है। आपको वो डिफरेंट डिफरेंट जन्म देते जाएंगे, ऐसे चलो ये वासना भी कर लो, ये वासना भी खत्म कर लो। इसके बाद में अर्जुन एक बहुत सुंदर प्रश्न करता है, ये हमारा प्रश्न है, ये व्यावहारिक प्रश्न है, मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन का अपना निजी प्रश्न है। अतः केन प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष, ऐसी क्या वस्तु है किसके कारण मनुष्य जो है पाप कर्म करता है? अनिच्छन्न पिवार्षण, असूचने उसने कहा देखो हमको पता है ये पाप कर्म है, अनिच्छन्न भी मेरी इच्छा नहीं है। देखो उसको ये ज्ञान है उस व्यक्ति को कि मैं पाप कर्म करने जा रहा हूं, अनिच्छन्न भी भीतर से कहता नहीं करना चाहिए, फिर भी बलादि नियोजित है, किसी ने बलपूर्वक लगा दिया, बोले नहीं तुमको करना है करो। होता है ना, हम लोग को भी ये प्रश्न होता है कि क्यों हम पाप कर रहे हैं, कौन सी चीज है जो हमें पाप कर्म कराती है? तो भगवान कहते हैं काम इस क्रोध इस रजोगुण समत्व है, ये आपका काम है, ये आपकी डिजायर है जो आपको पाप कराती है। देखो जब काम आता है ना, देखो काम लस्ट पैशन डिजायर सब उसके अंदर है, जब काम आता है ना तो उसके अंदर फिर उस टाइम में आदमी जो है घबरा सा जाता है, क्या करें नहीं करें। माइंड जो है दो किस्म का हो जाता है, एक माइंड कहता है नहीं नहीं ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ माइंड कहता है कि नहीं नहीं इसमें शोभन बुद्धि है, इसमें बहुत सुख मिलेगा, इसको कर लो। फिर वहां वोटिंग होती है, 51% कहता है कर लो, 49% बेचारा कमजोर पड़ जाता है, पाप कर्म हो जाता है। बलादी बनी हुई है, कोई आपको जबरदस्ती करा लेता है, मानो कोई भीतर बैठा हुआ है, कोई देवता है जो जोर से हमें कहता करो, बलादी बनी हो जाता है। तो काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समझ हुआ है, बोले ये काम कौन सा है, कौन सा काम है? मेरे को भूख लगी है, खाना खाना है, ये इस काम की बात नहीं हो रही यहां पर, हमारे रोटी कपड़े मकान की यहां पर बात नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति के अंदर सुख है और हम उस परिस्थिति को उस वस्तु को और व्यक्ति को बनाए रखना चाहते हैं और उसको बनाए रखने के लिए हम उसके अंदर और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तब वो जो है उसको कहते हैं इररेजिस्टेबल डिजायर, जिसको आप रोक नहीं पाओगे, रोक नहीं पाते हैं। ऐसी डिजायर के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है, हमारे रोटी कपड़े मकान के बारे में चर्चा नहीं है। अगर हम रोटी कपड़ा मकान अगर बंद कर देंगे तो ये शरीर का निर्वाह मुश्किल हो जाएगा, और शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर ये कैसे यात्रा होगी, यात्रा नहीं हो सकती है। तो जो इररेजिस्टेबल डिजायर है वो इसके अंदर में कवर्ड है। अब आपकी डिजायर आ गई, देखो सिंपल डिजायर नहीं प्रॉब्लम करती है,
सिंपल डिजायर को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, इरेजिस्टेबल डिजायर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब उस इरेजिस्टेबल डिजायर के अंदर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? इमीडिएटली क्रोध आएगा। क्रोध क्या है? बोले मॉन्स्टर है, राक्षस है। क्यों राक्षस है? बोला ये बहुत ज्यादा पाप कर्म कराता है। तो उसका एक विशेषण यहां पर उन्होंने दे दिया कि महापाप करवाता है क्रोध। क्रोध में आपको सामने में कौन आदमी, किससे आप बात कर रहे हैं, ये आपको फिर अब याद नहीं रहता है। जैसे ही क्रोध आता है आप फिर आप सामने वाले को देखते नहीं हो, ये हमारा बॉस है कि ये हमारे अग्रज हैं, ये कि हमारे पूजनीय हैं, कुछ ख्याल नहीं रहता है। जो मन में आता है वो कह देता है। देखो तो कामना एक ऐसी होती है कि भीतर में आई, आपने थोड़ा सा विचार किया, उसको नहीं करते हैं। एक डिजायर आई, चलो वेनिला आइसक्रीम के ऊपर में हॉट चॉकलेट, एक डिजायर है मन, सिंपल डिजायर है, कोई बात ही नहीं। बैठो अभी नहीं, अभी गीता क्लास चल रही है, रोक दिया उसको। अच्छा भीतर ही भीतर सोच रहे हैं उसके बारे में, और जैसे सोचते हैं उसमें सुख मिलता है, सोचने से भी सुख मिलता है। हम लोगों ने देखा है प्रिय मोद प्रमोद देखा है, केवल सोचने से भी सुख मिलता है, मगर कामना तो गई नहीं, कामना तो रह गई। कामना को हटाना बहुत कठिन है। जब तक आपको ये दृढ़ निश्चय नहीं हो जाए कि वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति में सुख नहीं है, तब तक आप कामना को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब तक आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे, कामना के पीछे दौड़ते रहोगे। तो शास्त्र और गुरु के कहने से आपने कामना को रोकना शुरू किया, रोकना, मगर कहां रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं हम। रामायण में राम कथा है, यहां पर काम कथा चल रही है। भगवान कृष्ण अभी तीसरे अध्याय में कामना के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये काम कथा है। तो ये कैसे उत्पन्न हुई? तो यहां पर उन्होंने कहा रजोगुण समुद्र, इसका कारण क्या है? बोले रजोगुण है, रजोगुण है। जब आपके अंदर सत्वगुण होता है, सवेरे में जब सो के उठते हैं तब देखो कामना नहीं रहती है, तब कामना नहीं रहती है। जहां रजोगुण हुआ या कामना आई तो रजोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण रहती है तो कामना आती है। आपके मन में एक डिजायर आ जाए ना तो आपको तिल मिला देती है, कैसे करे कैसे करे कैसे करे, रजोगुण बढ़ गया। और या रजोगुण बढ़ा हुआ है, कामना नहीं है, फिर भी आप सोचते हैं क्या करें, अब क्या करें, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, छटपट करते रहते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये कामना करती क्या है। तो हम लोगों ने देखा था 40वें श्लोक में आवृतम ज्ञान में तेन, ये क्या करती है? ज्ञान को ढक देती है। कामना जो है ज्ञान को ढक देती है। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है जो है, ये हमारा जो एनालिटिकल माइंड है ना, जिससे हम चीज को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कि उसकी एनालिसिस करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसको ये ढक देती है। देखो साधारण कामना नहीं ढकती है, साधारण कामना नहीं ढकती है। साधारण कामना को हम विचार से, ज्ञान से उसको हम समझ सकते हैं, मगर कोई इररेजिस्टेबल डिजायर आ जाती है तो ज्ञान कमजोर पड़ जाता है उसके सामने। छोटी मोटी डिजायर के पास में वो ज्ञान जो है जबरदस्त है, चुप करके बैठो, ये नहीं करना है अभी। मगर इररेजिस्टेबल जब डिजायर आ जाती है तो ज्ञान जो अंडरस्टैंडिंग है वो कमजोर पड़ जाती है, तो हम कर बैठते हैं। तो किसके ज्ञान को ये लोग आवृत करती हैं? आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वरिण, ज्ञानी लोग के। देखो दो किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, एक तो ज्ञानी है और दूसरे अज्ञानी है। जो रियलाइज है उनको कामना तकलीफ नहीं देती है, उनको कामना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अज्ञानी को भी नहीं फर्क पड़ता है, अज्ञानी को क्यों नहीं फर्क पड़ता है? अज्ञानी को शंकराचार्य जी लिखते हैं, जब कामना आती है तो बोलता है मेरा मित्र आया है, ये मेरा दोस्त है, ये करने से हमें सुख मिलेगा, अल्टीमेटली उसको दुख मिलता है, मगर वो करता है बिंदास की तरह, करता जाता है करता जाता है करता जाता है, मित्र समझता है और ज्ञानी के पास आती नहीं है। मगर इस ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक और व्यक्तित्व है जिसको हम कहेंगे विवेकी है, वो आदमी विवेकी है। विवेकी का मतलब उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ अभी और वो अज्ञानी भी नहीं है, उसको मालूम है कि ये कामना जो है अल्टीमेटली मेरे को दुख देने वाली है, ये विचार वो कर पा रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा है सर्वम दुखम विवेकिना, जो विवेकी है उनको दुख सबसे ज्यादा होता है, अविवेकी अज्ञानी को दुख नहीं है, वो तो कामना को मित्र समझता है। अच्छा ये कामना, ये तो अच्छी बात है, कर लेते हैं। तो विवेकी जो है वो सोचता है नहीं, ये तो गलत काम है, ये तो नहीं करना चाहिए हमको, ये तो फंसा रही है कामना। तो ज्ञानी और अज्ञानी के बीच की जो व्यक्तित्व है वो यहां पर इस ज्ञानी शब्द से कहा गया है। तो भगवान एक उदाहरण देते हैं कि ये कामना कैसी है। काम रूपे ने कौनते या दुष्पुरे ना नाले न चा, अनल मतलब अग्नि, बोले कैसी है ये, बोले अग्नि में जैसे घी डालते जाओ खत्म ही नहीं होती है, जितना अग्नि को घी देते जाओगे उतनी ज्यादा प्रज्वलित होती है वो, कभी आप घी डाल के अग्नि को आप बुझा नहीं सकते, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। वैसे ये कामना जितनी आप फुलफिल करते जाओगे उतनी बढ़ती जाएगी। अब इतना तो आप सबका एक्सपीरियंस हो गया होगा, आज तक हम लोगों ने बैंक बैलेंस के कितने लिमिट बनाए और हर लिमिट को क्रॉस करते गए, किसी भी लिमिट पर रुके नहीं कि बस और नहीं चाहिए, कामना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर एक समय आता है जब हम रिटायर कर जाते हैं तब फिर सोचते हैं पीछे का। रिटायरमेंट के पहले हर साल हम अपना कैलकुलेट करते रहते हैं कि कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, कितना शेयर मार्केट में है, कितना एफडी के अंदर है, कितना बैंक बैलेंस है। हर साल गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना, ये आपको यहाँ देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, इंडिया में तो आपको बताना पड़ता है आपके पास एसेट कितना है, बैंक में कितना है, एफडी कितना है, शेयर कितना है, मकान क्या है, सारा वेल्थ वगैरह आपको बताना पड़ता है। तो एक आप हर साल देखते हो वो बैलेंस शीट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, इट्स इंप्रूविंग ईयर आफ्टर ईयर। मगर जब 65 साल 70 साल हो जाता फिर आप सोचते हो अरे 70 साल हो गई, अब तो जाने का समय आ गया, क्या किया हमने 70 साल में, पूरी जवानी खत्म हो गई और क्या हमने संचय किया, रुपए पैसे संचय करके रख दिए। अनल की तरह ये दुष्पुरेण है और ये काम जो है इस ज्ञान को ढक देता है। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञानी विवेकी इस काम रूप नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है, ये कामना ज्ञान को ढक देती है। ज्ञानी ही पहले से जानता है कि इसके द्वारा मैं अनर्थों में नियुक्त किया गया हूं, मेरा अनर्थ की तरफ जा रहा हूं, ये उसको मालूम है ये कामना आई है, यह अनर्थ का कारण है। इससे वह सदा दुखी भी होता है, सदा ऑलवेज दुखी रहता है, इसलिए यह ज्ञानी का ही नित्य वैरी है। वैरी क्यों, क्योंकि हमको दुख देता है, ये दुख देता है इसलिए वैरी है। मूर्ख का नहीं, कौन कह रहा है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा के समय उसको मित्र के समान समझता है। मूर्ख ये समझता है कि ये कामना ही अच्छा है, ये तो मेरा मित्र है, फिर जब उसका परिणाम रूप दुख प्राप्त होता है तो समझता है कि तृष्णा के द्वारा मैं दुखी किया गया हूं। देखो हर कामना के बाद में हर जितनी भी आप वस्तु इकट्ठी करते हो ना, अल्टीमेटली वो आपको दुख देगी, अल्टीमेटली आपको दुख देगी है। अच्छा अब भगवान कहते हैं कि कामना को ढकता है ज्ञान इनइफेक्टिव हो गया है, ज्ञान इम्पोर्टेंट हो गया है, जब हमको ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? कामना ने ढक दिया उसको, इट्स नॉट अवेलेबल। अब भगवान कहते हैं कि कितने तरीके से ज्ञान को ढकती है यह कामना, कितने तरीके से। तो इसका उत्तर भगवान 38वें श्लोक में देते हैं, धूमे नाभ्रियते वन्नी यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नाभृत्यो गर्भ तथा तेन इदामाभृतम्। धूमे नाभ्रियते वन्नी, जैसे धुआं आग को ढक देता है। देखो ये हमने देखा हुआ ना कई बार, आप हवन ववन करते हो, फ्लेम्स हैं, ऑल ऑफ ए सडन आप देखे धुआं ही धुआं है खाली, अब आग नहीं नजर आती है। उसी तरह से धुआं क्या है? धुआं कामना है। आग क्या है? आग है ज्ञान, अग्नि ज्ञान है, क्योंकि वो रोशनी देती है। उसको ढक दिया, किसने ढक दिया? धुएं ने ढक दिया। देखो धुएं और उसका अग्नि का बड़ा विचित्र एग्जाम्पल है। वो अग्नि जो है प्रकाशात्मक है, प्रकाश देती है, और धुआं अप्रकाशात्मक है, अंधेरा करता है। अंधेरे ने प्रकाश को ढक दिया, हुआ ना? तो बोलते एक तरह तो ये है, दूसरा क्या है? आदर्शो मलेन च, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है। और तीसरा उदाहरण एग्जाम्पल दिया, यथा उल्बेन आवृत गर्भ, जैसे गर्भ बच्चा जो है जलायु के अंदर में ढका हुआ है। आप लोग आजकल देख लेते हो अल्ट्रासाउंड से, नहीं तो आगे के जमाने में कहां बच्चा दिखाई पड़ता था? नहीं दिखाई पड़ता था। तो एग्जाम्पल दिया, वो कब दिखाई पड़ेगा? 9 महीने बाद, सिर पटक के मर जाओ उसके पहले नहीं नजर आएगा वो। तो उन्होंने, भगवान ने 3 एग्जाम्पल क्यों दिए? तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया, धुएं से अग्नि आच्छादित है, थोड़ी सी हवा कर देने से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, थोड़ी सी हवा करनी होगी। दूसरा एग्जाम्पल, आप मान लो कभी हम लोग के मिशन में कहीं जाओ और बहुत दिन तक वो रूम अगर व्यवहार नहीं हुआ हो, या आप लोग अपना रूम बंद करके जब जाते हो, भारतवर्ष में तो एक दिन में नजर आएगा आपको, खिड़की खुली रहनी चाहिए और आपके बाथरूम का धूला तो अपने आप अब शीशे पर ऊपर में धूला लग गया, आप बाथरूम गए, आपको अपना चेहरा स्वच्छ नजर नहीं आता है, आप फूंक मारते हो, उससे जाता है धूल? नहीं जाता, धूल उससे नहीं जाता है। क्या करना होगा? थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा, कागज कपड़ा कुछ लेके उसको पोछना होगा थोड़ा सा। धुएं से अग्नि में क्या करना था? थोड़ा सा प्रयास करना था। और शीशे के ऊपर धूल, तो आपको कपड़ा लाना होगा, साबुन सोडा लगा के उसको साफ करना होगा, थोड़ा ज्यादा प्रयत्न लगेगा। और तीसरा आवरण कैसा है? तो बोलते हैं समय आने पर होगा, आप प्रयास कर लो, जितना चेष्टा कर लो, गर्भ 9 महीने के पहले आपको वहीं मिलेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा बच्चा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आप जितनी चेष्टा कर लो। अच्छा, तो यहां पर उन्होंने 3 एग्जाम्पल देने क्यों दिए? उन्होंने क्यों दिए 3 एग्जाम्पल? भगवान एक एग्जाम्पल देने से ही बता देते कि कैसे जो है ज्ञान को कामना ने आवृत कर दिया। देखो कामना भी 3 किस्म की है, एक सात्विक कामना है, दूसरी राजसिक कामना है, तीसरी तामसिक कामना है। ये 3 कामनाओं को बताने के लिए भगवान ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हैं। सात्विक कामना कैसी है? तो बोलते हैं जैसे आग को धुएं ने ढक दिया, थोड़ा सा प्रयास करो हट जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है, सुख संगे न भगनाती ज्ञान संगे न चानग। सत्वगुण भी आपको जो है गोल में पहुंचाने के लिए थोड़ी सी बाधा देता है, अटकाता है, वो भी बांधता है, जैसे बहुत लोग को देखो सेवा करने जाते हैं, बहुत दिन से सेवा करते हैं कहीं पर जाके टेंपल में या मिशन के अंदर, करते 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 उनको एक उसका ईगो हो जाता है, एक यश प्राप्त करने की एक लालसा बन जाती है। अच्छा, वो बाधा है, हम वहां ईगो बूस्ट नहीं करने जा रहे हैं, हम ईगो को खत्म करने के लिए सेवा कर रहे हैं, मगर सेवा के नाम पर क्या हुआ, ईगो बूस्ट हो रहा है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति का कैसे उद्धार होगा, बोलो थोड़ा सा प्रयत्न करें, एक सत्संग में चला जाए, उद्धार हो जाएगा। वो व्यक्ति अगर सत्संग में चला जाए और उसको बता दिया जाए कि भाई आप जो काम कर रहे हो इससे आपका अहंकार बढ़ रहा है, आपको यश के लिए कीर्ति के लिए काम नहीं करना है, आपको तो अहंकार को खत्म करना है, इसलिए आप काम कर रहे हो, थोड़े से प्रयास में एक सत्संग के अंदर उसको मिल जाएगा सात्विक। राजसिक डिजायर क्या है, भक्ति रजोगुण है, वो कर्म सोसाइटी के लिए नहीं करता है। सात्विक कर्म, सात्विक डिजायर वाला व्यक्ति जो है सोसाइटी के लिए कर्म करता है, मंदिर में जाके सेवा करता है, सोसाइटी के लिए करता है, राजसिक अपने लिए करता है, राजसिक अपने लिए करता है। इसीलिए यहां पर शंकर गीता में कहा गया, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निवग्नति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो ऐसी कामना को हटाने के लिए क्या होगा, प्रयत्न ज्यादा करना होगा। सात्विक को थोड़ा कर्म हटाना है, थोड़ा कर्म करना है, राजसिक को क्या करना होगा, कर्म योग करना होगा, ज्यादा कटना पड़ेगा। किस लिए, उसके लिए बताया गया एग्जाम्पल क्या था, जैसे शीशे के ऊपर में धूल, थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। और तीसरी क्या है, बोले तीसरी तामसिक डिजायर है, तमोगुण इच्छा है, बेसर है, लोअर है, विकेट है, उसको हटाने में काफी समय लगता है। जैसे सफेद कपड़े के ऊपर में दाग लग जाए, अभी मैं परसों प्रमिला जी के साथ में गया एक जगह बाजार में, तो कपड़े सफेद पहने हुए थे, हम चाय पी रहे थे, चाय जो है वो गिर गई सफेद कपड़े पर, अब वो ज्यादा नजर आता है, तो हम परेशान हो रहे हैं, खाली उधर जा रहा है, चाय का दाग हो गया। फिर जब घर वापस आया, पहला काम शर्ट उतारी, अब उसको रगड़ रहे हैं, जाए ही नहीं, साबुन से नहीं जाए, एक बार दो बार, फिर उसके बाद उसके अंदर रो दिया, क्या बोलते हैं उसको, ब्लीच करना पड़ा थोड़ा सा, तब फिर सफेद। ये तामसिक, एक धब्बा को हटाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तथा तेन इदम आवृतम, इसी तरह से ये जो है ज्ञान जो है ढका हुआ है। आप लोग गुरुदेव की कमेंट्री भी पढ़ना, उसमें भी बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और समझें हम। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं, जैसे प्रकाश स्वरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए अंधकार रूप धुएं से और दर्पण जैसे मल से आच्छादित हो जाता है, तथा जैसे गर्भ अपने आवरण रूप जेर से आच्छादित होता है, वैसे ही इस काम से यह ज्ञान ढका हुआ है। आम आदमी का ज्ञान इसी तरह से ढका हुआ है। अच्छा, ये आग क्या है, आग और धुएं का रिलेशन जो है सहज है, सहजायते सहज, सहज किसको कहते हैं, हम लोग सहज वर्ड आप समझते हो ना, सहज है, बहुत सहज चीज है, सह जो मिस जायते, सहजायते जो एक साथ जन्म ले, तो आग और धुआं एक साथ जन्म लेते हैं तो उसको कहते हैं सहज, सहजायते। अच्छा, ये जो है धुआं और अग्नि जो है ना, ये नेचुरल है, इट्स नॉट मैन मेड, इट्स नॉट कृत्रिम, इट्स नेचुरल। अग्नि में प्रकाश है और धुआं में प्रकाश नहीं है, मगर धुआं ने अग्नि को ढक दिया। उसी तरह से धूल ने शीशे को ढका, उसी तरह से जेर ने गर्भ को ढक दिया। अच्छा, ज्ञान कामना से ढका है, तो यहां ज्ञान किसको पकड़े हम, किसको ज्ञान समझें? किसको ज्ञान समझें? अगर हम ज्ञान सच्चित आनंद को अगर समझें, अपनी आत्मा को समझें जो ब्रह्मन है, तो वो ब्रह्मन अज्ञान से ढक गया। ज्ञान अगर हम अपनी आत्मा को समझें, सच्चिद आनंद को समझें, सत्यम ज्ञानम अनंत को समझें, ब्रह्मन को समझें, वो आत्मा, वो ब्रह्मन, वो सच्चिदानंद मेरे पास है, मगर मेरे अनुभव में नहीं है। क्यों नहीं अनुभव में है? क्योंकि वो ढक गया है। किसने ढक दिया है? अज्ञान ने ढक दिया है। अब बहुत लोगों का प्रश्न होता है, अज्ञान कैसे ज्ञान को ढक देता है? जैसे धुआं आग को ढक देता है, वैसे ढक देता है, ढक दिया उसने। अब उससे छुटकारा कैसे होगा, कैसे हटाएं? तो उपनिषद के अंदर शैली बताई गई है, अध्यारोप अपवाद सुपर इंपोजिशन निगेशन, सब जगह वही एक शैली है। जितने उपनिषद हैं सब एक शैली पर आधारित हैं। एक ब्रह्मन है, उस ब्रह्मन के ऊपर में सारा संसार सुपर इंपोज्ड है ना? तो अगर आपको ब्रह्मन को प्राप्त करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है? ये सुपर इंपोजिशन को निगेट कर दो, तो क्या रह जाएगा? ब्रह्मन रह गया, आत्मा। हमको तो आत्मा ही चाहिए। तो सारे उपनिषद के अंदर ये अपवाद और सुपर इंपोजिशन, अध्यारोप एंड अपवाद, सुपर इंपोजिशन एंड निगेशन, ये इस शैली से आपको अज्ञान को हटाना है। अगर ज्ञान का मतलब हम बौद्धिक ज्ञान है या फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि को ले, बुद्धि को ले, तो बुद्धि का क्या फंक्शन है? टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड, टू डिस्क्रिमिनेट, टू कम टू ए डिसीजन। मगर बुद्धि कामना से ढकी हुई है, वो बुद्धि जो है जजमेंट नहीं कर पाती है। मगर जब कामना पूर्ण हो जाती है, उस टाइम वो बुद्धि तीक्ष्ण रहती है। जब कामना आती है, इररेजिस्टिबल डिजायर आएगी, तो वो बुद्धि ढक जाती है, उसका पावर कमती हो जाता है। सहज एक अगर डिजायर आए तो बुद्धि उसके लिए ताकतवर है, मगर इररेजिस्टिबल डिजायर आ जाए तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है उसके सामने। कमजोर पड़ जाने का मतलब बुद्धि को कामना ने ओवर पावर कर दिया। कामना ने इसको ओवर पावर कर दिया। जैसे ही कामना खत्म हुई, ये बुद्धि जो है अब वो कामना से हट गई, आच्छादन उसका खत्म हो गया, तब क्या हो गया? बुद्धि शार्प हो गई। भगवान 39वें श्लोक में कहते हैं कि कामना शत्रु है। शत्रु क्या करता है? देखो, शत्रु आपको कबल नुकसान पहुंचाता है, आपको सताता है, आपको दुख देता है। डिफिनीशन ऑफ शत्रु, सातनात शत्रु। संस्कृत में अगर कोई पूछे आपसे, भाई शत्रु की डिफाइन, शत्रु सातनात शत्रु, जो आपको सताए, जो आपको दुख दे, वो शत्रु है। तो कामना हमें सताती है, इसलिए कामना हमारी शत्रु है। अच्छा, काम अगर शत्रु है तो हमें इसे मारना चाहिए, कामना को खत्म करना चाहिए ना अर्जुन? तो कामना को अगर मारना है तो उसका ठिकाना चाहिए, एड्रेस चाहिए, शत्रु का ठिकाना पता होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको बॉम्बिंग कर सकते हो। पहले तो खबर लानी होगी कहां बैठा है वो, है? देखो कारगिल वार आज से 20 साल 25 साल पहले हुई होगी, हमारे भारतीय सैनिक बहुत मारे गए, कमांडर और उसके बाद बहुत लोग उच्च अधिकारी लोग भी मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि दुश्मन ऊपर है, हम नीचे हैं, दुश्मन का पता नहीं लगता कहां है, छिपा हुआ है, वो ऊपर से वार कर रहा है, हम मरते जा रहे हैं। बंबई में हुआ था ना, ताज होटल में घुस गए थे टेररिस्ट लोग 26/11 26 नवंबर। अब चारों तरफ से उसको घेर लिया, मगर 3 दिन लग गए, किस रूम में घुसा हुआ पता नहीं लग रहा है, कभी इस रूम से गोली आ रही है, कभी उधर से आ रही है, कभी उधर से आ रही है। शत्रु का ठिकाना पता होगा तब तो उसको लड़ लोगे, ठिकाना चाहिए हमको। ये कामना हमारी शत्रु है, ये तो पता लग गया हमें, इसको मारे कैसे, हम मारने का उपाय भी तो बताना होगा। ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, यहां नजर नहीं आता है, इंडिया में नजर आता है आपको, कई बार आपको कई जगह पर पुलिस बंकर मांगते हैं, बंकर वो कुछ है, सैंड बैग्स लगा के पीछे बैठ जाते हैं कि शत्रु मारेगा तो हम पीछे नीचे बैठे हुए हैं, और जैसे ही उनको अब वो बनाया है उन्होंने, कुछ सोच समझ के बनाया है कि शत्रु अगर आएगा तो इधर से आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, हम वहां बैठे रहते हैं और वो, तो हमको भी वो प्रोटेक्शन लेना है ना हमको। अब शत्रु को पता लग गया है कि हमारे पास एक शत्रु है जिसका नाम है कामना है, उस शत्रु को हमको मारना है, कैसे मारे उसको, तो भगवान 40वें श्लोक में बताते हैं। इंद्रियानि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतेर्विमोहयत्ते स ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयत्ते स ज्ञानामावृत्य देहिनाम्। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम अतुच्यते, अधिष्ठानम नॉट सबस्ट्रेटम, अधिष्ठान का मतलब ये उसका एड्रेस है, हैं कहाँ रहती हैं, किस स्थान पर रहती हैं, तो बोले इंद्रियाणि मनोबुद्धि। तो इंद्रियाणि का मतलब क्या हुआ, इंद्रियाणि मतलब प्लूरल, तो कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, दोनों मिला के 10 बहिकरण हम लोग बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट 10 एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 10 बहिकरण हैं। ओके, और मन और बुद्धि अंतःकरण, तो 10 और मन 11 और बुद्धि 12, 12 शत्रु हैं हमारे पास में, एक दो नहीं 12 शत्रु हैं। अच्छा, और अगर चित्त और अहंकार को साथ ले लें, विनय जी ने जब प्रस्ताव दे दिया कि अंतःकरण, तो अंतःकरण में तो 4 चीजें होती हैं, है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो शास्त्र में आपको कई जगह मिलेगा कि मन और बुद्धि बोलते हैं, चित्त अहंकार नहीं बोलते हैं, हैं? जब जहां पर मन और बुद्धि केवल हो तो आपको समझ लेना होगा कि बुद्धि के अंदर अहंकार है और मन के अंदर चित्त है, हैं? इसलिए मन और बुद्धि बोलने से मतलब अहंकार बुद्धि के साथ में है, चित्त मन के साथ में है। तो आप 12 शत्रु कहिए या 14 शत्रु कहिए, ऐसे शत्रु हैं। अरे हम तो सोचते थे हमारा शत्रु बाहर है, देखो शत्रु वर्ड भी भगवान ने यूज किया, इस वास्ते यूज किया कि ये ज्ञान कहां दिया जा रहा है, युद्ध भूमि में शत्रु हैं, और ये 4-5 श्लोक में भगवान 4 बार शत्रु का नाम ले रहे हैं, 4 बार लिया है शत्रु शत्रु शत्रु। अच्छा, तो ये कामना क्या करती है, भीतर छिपी हुई हमारे भीतर ही अच्छा कामना है, मगर ये क्या करती हैं? एते विमोहयति ऐसा ज्ञानम आवृत्य देहिनम, विमोहयति मतलब ज्ञान को ढक दिया, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अब काम नहीं कर रहा है। विमोह, मोह क्या है? नॉट अंडरस्टैंडिंग ए थिंग एज इट इज मोह। अब विमोह उसका सुपरलेटिव, विशेष रूप में मोहित है तो हमको डेल्यूट कर देती है। अच्छा, तो शत्रु जो है इंद्रियों में है, हमारी धारणा थी शत्रु तो बाहर होगा, विषयों में होना चाहिए, शत्रु तो भीतर बैठा हुआ है। हम सोचते हैं विषयों के अंदर शत्रु बैठा हुआ है, बोले नहीं नहीं नहीं, शत्रु आपके भीतर है। तो भीतर कैसे आता है? बोले इंद्रियां जो है वो विषय को लेके आती हैं, विषय को लेके आकर वो मन बुद्धि को दे देती है, या फिर मन कहता है कि ना ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो आपको जरूर रखना चाहिए, ये तो आपको जरूर लेना चाहिए, आपके पास में सब रंग की साड़ी है, पर्पल नहीं है, आपको जरूर कंप्लीट करना है इसको। उसके ऊपर शोभन बुद्धि ढा देती है, अब फिर बुद्धि डिसीजन देती है, नहीं नहीं जरूर चाहिए, सचमुच चाहिए, वहां स्टॉक में नहीं है, आप खरीद लेते, हो गया, कामना ने आपको घेर लिया। अगर ये न जाए भीतर, अगर विषय भीतर ना जाए तब कामना नहीं उठेगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मैं ये सब चीजें जो है ना इन मॉल वालों को अच्छी तरह से पता है कि आपके शत्रु आपके भीतर बैठे हुआ है, हैं? वो आपको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होने देंगी, वो आपको सब चीजें दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। यहां तो ज्यादा छूटे, इंडिया में छूट नहीं देते इतने, पहन के देखो दो दिन के बाद वापस कर दो, ऐसा नहीं है। तो ये आपको पकड़ती हैं। अच्छा चलो, अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर दें, 10 इंद्रियां जो हैं इनको बंद कर देते हैं, 5 organs of perception and 5 organs of action बंद कर दिया, अब बताओ मन के अंदर कामना आ सकती है कि नहीं? एक तरीका है कि विषय हमारे अंदर घुसते हैं, कामना आ जाती है, ये हमको झोला चाहिए, बस हमने देखा तब तो कामना आई, हम नहीं देखेंगे चलो, फिर मन के अंदर कामना आ जाती है, क्योंकि मन के अंदर पुरानी स्मृति है, पुरानी स्मृति है, पुरानी स्मृति से भी आपकी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद में बुद्धि, बुद्धि से भी आती है। अच्छा, थोड़ा सा और डीपर इसके अंदर चलें, मन बुद्धि, देखो विषय जो है ना इंद्रियां ऑलवेज दे एक्ट इन प्रेजेंट, विषय अगर प्रेजेंट में नहीं घुसेंगे तो जो है वो डिजायर नहीं आएगी, माइंड रिलेट्स टू पास्ट, स्मृति, बुद्धि थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, यू प्लान समर में कहां जाएंगे घूमने, आप प्लान करते हैं 6 महीने आगे से, किसका काम है ये? प्लानिंग ए वैकेशन ऑल्सो फ्यूचर है ना, अभी तो देर है, हमने प्लान बहुत आगे किया है, किसका काम था वो? बुद्धि का। मन रिलेट टू पास्ट, और इंद्रियां दे रिलेट टू प्रेजेंट ओनली। देखो इंद्रियां केवल जो है इंफॉर्मेशन लाती हैं, सूचना लाती हैं, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, इतनी चीजें पड़ी हैं, हर चीजों को देख के हमको कामना नहीं आती है, हर चीज देख के नहीं कामना आती है, सूचना लाती है, फिर मन उसके ऊपर में शोभन बुद्धि डालता है, इसमें सुख है, फिर बुद्धि निर्णय लेती है, इस तरीके से हम कामना एक फर्म हो जाती है और हम खरीद बैठते हैं। तो कामना को खत्म करने का सबसे इजी तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, सारी इंद्रियां और मन बुद्धि को मार दो, खत्म हो गया। कहां से फिर कामना आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हम इंद्रियों मन बुद्धि को मार डाले? नहीं नहीं नहीं, आपको मारना नहीं है। क्या करना है हमको? जो है डाइवर्सन लेना है। क्या डाइवर्सन लेना है? तो रामायण में कहा, वाल्मीकि संवाद के अंदर, जिनके श्रवण समुद्र समाना। आप जो है सुनते हो, अभी क्या सुनते हो? अभी दुनिया की बातें सुनते हो। आपको सुनना क्या चाहिए? अध्यात्म सुनना चाहिए। अध्यात्म सुनोगे तो हो जाएगा। अगर हमारा अंतःकरण और बहिःकरण दोनों ही अगर खाली राम राम में लग जाए, देखो बहुत साइंटिफिक बात है एकदम। हमारी 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि जब संसार में जाती है तो संसार की वस्तुओं को ग्रहण करने की इच्छा होती है। अगर इस मन और बुद्धि और इंद्रियों को हम रोक कर, हम संसार से हटाकर इसको अगर राम में लगा दें, तो महात्मा लोग कहते हैं जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। अब बताओ, आपको छुटकारा हो सकता है? हम किस कामना की बात कर रहे हैं? हम खाने पीने की या नीड की बात नहीं कर रहे हैं। हम नीड की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस इररेजिस्टेबल डिजायर की बात कर रहे हैं जो हमसे पाप करवाती हैं। उसको अगर रोकना है तो हमको क्या करना होगा? उसको रोकना है तो आपको अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को डाइवर्ट करना है, उनको काम देना है। क्या काम देना है? ये राम, भगवान की तरफ लगाओ। अभी मन, बुद्धि, इंद्रियां किधर लगी हुई हैं? संसार में लगी हुई हैं। और संसार हमें बराबर दुख देता है, ये हमने बहुत बार देख लिया है। दुख का एकमात्र कारण संसार है। अच्छा, तो एंटीडोट क्या हुआ? देखो, अगर हम ध्याय तो विषयान पुंसा, तो हमारा क्या होता है? नाश हो जाता है। अगर हम विषयों का ध्यान करना शुरू करें तो हमारा नाश हो जाता है। और अगर हम उसका एंटीडोट अगर लें, जाही न चाहिए कबहु कुछ, तुम संग सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सार आउर निज गे। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो आराम से अपने भगवान के अंदर, आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, आराम से अपना मस्त है। सुंदरकांड में भी ऐसी स्तुति आई है, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हमारे मानस को जो है काम आदि दोष से हटा दो। तो हमने अपने भीतर में शत्रु देखा। शत्रु कौन है? कामना है। कामना वो कहां पर है? शत्रु का ठिकाना क्या है? शत्रु को मारना है हमने, उसका ठिकाना क्या है? तो 10 इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि है। ये कहां है? ये बाहर नहीं है, ये भीतर है। अगर ये भीतर हैं तो हमको अपने आप को कैसे परिवर्तन करना है? क्या हम इन इंद्रियों का, मन और बुद्धि का नाश कर दें? नहीं, इनको दूसरा जॉब दें। क्या जॉब दें? तो ही तो चीज है, एक आत्मा है, दूसरी अनात्मा है। अभी अनात्मा में लगा हुआ है मन, बुद्धि और इंद्रियां, उसको वहां से हटाओ और आत्मा में लगा दो। अब आत्मा के बदले आप राम कह दो, कृष्ण कह दो, काली कह दो, अल्लाह कह दो, क्राइस्ट कह दो, जो मर्जी कहना कह दो, हमें कोई फर्क नहीं है। मगर संसार से हट जाओ। संसार में उतना ही जाओ जितना आपको दरकार है। जितना इस संसार से लेना है वो लो, हमारे लिए ही है सब कुछ। मगर हम अपना गोल जो है भूल चुके हैं और संसार में उलझ गए हैं। हमारा गंतव्य स्थल क्या है उसको हम भूल गए हैं और संसार की वस्तुओं के अंदर हम फंस गए। हटाने का एकमात्र तरीका है, आपको शुरू करना होगा कहां से? सत्संग से। बार बार आपको हर उपनिषद, हर गीता में, हर उपनिषद में, रामायण में, भागवतम में एक ही बात कही होगी कि अपने को बचाओ, यहां से हटाओ। अब बताओ आप लोग, ये संभव है शत्रु को मारना? अगर आपको विज्ञान समझ में आ गया ठीक से, एक्ट अपॉन इट, तब तो लाभ होगा। तब लाभ होगा। नहीं तो अगर साइंस आपको समझ में आ गया, ज्ञान आपको मिल गया, आप एक्ट नहीं करते हो, क्या होगा? कोई लाभ नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं होगा। गुरुदेव की भाषा में, यू आर ए डोंकी कैरिंग ए टन ऑफ गोल्ड। सब ज्ञान है आपके पास में, फिर भी आप व्यवहार नहीं करते हो। डोंकी इज कैरिंग ए टन ऑफ गोल्ड बट ही डजंट नो द वैल्यू ऑफ द गोल्ड बट ही इज कैरिंग। ठीक है, और जो तीन चार श्लोक बचे हैं उसको हम लोग देखेंगे बाद में। इतना तक आपको समझ में आ गया पूरा साइंस विज्ञान समझ में आया? ओ
शांति 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 हरि ओम।